Salt side. Handil bound. And Radha Kund, Sham Kund, Kusham Sarova, Surya Kund, all are there. And in the middle, this is Raj. This is also Aparadhanjan Park, Devananda Pandit, Gopal Chapal, and professors and students of Sanskrit, Nyaya. They have done Aparadhanjan Park, all they have cleared.
Hello.
Near Doi today. What were you saying at Near Doi today?
বলছেন নির্দয় বল সম্বন্ধে কি বললেন? নির্দয় ঘাট সম্বন্ধে বললেন না?
A lot of baskets. You have heard it still, you are...
No, she wasn't there.
I couldn't go.
My explained so many times as before in Vrindavan.
What I told?
Mathura also.
Speak.
Well, you were saying something, you were talking about this different sampradayas and...
No, after that, last.
Oh.
About Nidya Ghat.
Oh, about Chaitanya Mahaprabhu, how he was in Navadweep, and he was in Mayapur, and he decided that night he will leave to take sannyas, and the states of Sachima, the states of Vishnupriya, he was doing Sringar of Srimati Vishnupriya Devi,
and what telling to Sachima?
Oma. I've given you so much trouble as a little boy.
No, no.
Then what?
Vishnupriya.
What saying the Vishnupriya?
I had gone to take bath in Ganges. And I got...
Oh, she hurt her toe. She
stubbed her toe.
Stubbed her toe.
Huh?
She stubbed her toe and she lost her...
lost her?
Nose ring.
What was that?
You know, bad luck.
Besha, at the time of marriage, and it was lost.
Yeah.
That his marriage shine was lost. It means the marriage is
finished.
Going to be stopped.
Both are inauspicious.
Inauspicious.
Yeah. So he was weeping so much. And Sachima was not discovering any way to give consolation. Both were weeping. When Chaitanya Mahaprabhu was decorating Vishnupriya, she was thinking, how we do it? For 2-3 years, he had not behaved like this, and how this day he is decorating me, giving me betel nuts, and telling so many Rasamayi Katha. It seems that the lamp will
go out.
Dab, dab.
Dhab, dhab, and dhab. So I think that this is the dhap day. But Chaitanya Mahaprabhu told Jogmaya to make him her sleep, and he slept. And Chaitanya Mahaprabhu.
And you were saying about giving the mantra.
And then he jumped up in Ganges and went up to Kantak Nagari, and he
shaved his head.
Cut hair, beautiful. And how he gave mantra to?
Ishwar,
not
Ishwar.
No,
and then he took sannyas and then began to go towards Vrindavan. Ha Krishna, Ha Krishna, Ha Krishna. And Advaita Acharya showed him the way of Vrindavan. Actually, he was, unko thagna.
He went to Shantipur.
And took him to Shantipur. And he managed to meet Sachima and all others. Not more.
In the beginning, at Rudidri, you were saying...
You should be satisfied by him.
I Bangla to say this. I Delhi, I was
হিন্দি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম, এই জন্য সর্বত্র বাংলাতেই বলছিলাম। কিন্তু এখানে পরম পূজ্যপাদ মহারাজ হিন্দি ভাষাতে কিছু বলতে বলছেন, কারণ বহু হিন্দি ভাষী লোক আছে, ওদের একদিনও সুযোগ হয় না কিছু হিন্দি ভাষাতে শোনা। এই জন্য আমি আজকে হিন্দি ভাষাতে কিছু যৎকিঞ্চিত বলি, তবে আমার হিন্দি আর বাংলা প্রায় একই। যদি হিন্দি বলি তাহলে বাঙালিরাও বুঝতে পারবে বাংলা ভাষাভাষী, আর যদি আমি বাংলা কথা বলি তাহলে হিন্দি কথা লোক বুঝতে পারে। তো যা হোক, আজকে আমি কিছু হিন্দি ভাষাতেই বলি। সব প্রথমে আমি আমার পরমারাধ্যতম গুরুপাদ পদ্ম নিত্য লীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রী চরণ কমলে আমি কোটি কোটি ষষ্ঠাং দণ্ডবতি প্রণতি আমি জ্ঞাপন করি। তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ আমার শিক্ষাগুরু এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডী পাদগণ, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, যথাযোগ্য আমি সকলে চরণেতে আমার অভিবাদন জ্ঞাপন করি। হম লোক আজ গুরু পাদ পদ্ম কি কৃপা সে হই ইহা পর সব একত্রিত হুয়ে হ্যাঁ। আজ গুরুজি রাতে তো বড়ে প্রসন্ন হতে যে আজ কেবল বাংলাকে হি নহি ভারতবর্ষকে বহু সে প্রাভাংশকে লোক বিহার, বঙ্গাল, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বম্বই, গুজরাট ইত্যাদি সবই প্রান্তকে লোক, ইয়ান তাকি ইংল্যান্ডকে লোক, জার্মানিকে লোক, হল্যান্ডকে লোক, আমেরিকাকে লোক, অস্ট্রেলিয়াকে লোক, সবই দেশকে লোক আজ ইহা পর উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ, সবই ভাষাওকে জাননে লাগে। ये गुरु जी की ही महिमा है, इसलिए ये देख करके आनंद होता है कि क्रमशः आदमी क्रमशः उधर में आकृष्ट हो रहे हैं गौड़ीय वेदांत समिति की प्रचार धारा से। तो आज मैं हम लोग विभिन्न अभी तक गोद्रम द्वीप में हम लोग गए, मध्य द्वीप में गए, रीति द्वीप में गए, जन्मद्वीप में भी कल गए थे, आज हम लोग कोलद्वीप में और रुद्रद्वीप में गए। इसलिए वहां की संक्षेप कुछ बातें बतला करके तो फिर हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी किस लिए जगत में आए, उनके अवदान के संबंध में, उनके दान के संबंध में थोड़ा बहुत हम बतलाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारे पूज्यपाद वैष्णवगण त्रिदंडीगण बहुत कुछ आलोचना कर रहे हैं और बतला रहे हैं। आज हम लोग देवानंद गौड़ीय मठ से कोलद्वीप में गए। पहले ये मैं बतलाना चाहूंगा कि यह स्थान साधारण नहीं है, यहां पर कि गुरु जी ने श्री देवानंद गौड़ीय मठ स्थापन किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के नवदीप धाम परिक्रमा की महिमा से हम जानते हैं कि यह स्थान कुलिया अर्थात कोल द्वीप है। इसके पास ही में पूर्व की तरफ में पंचबेनी यहां पर घाट है। पंचबेनी प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती, और यहां पर उस तरफ में गंगा जी, भागीरथी, अलकानंदा इत्यादि बहुत सी नदियां गंगा जी से होकर के आती है, और इधर से जमुना जी, सरस्वती, मानस गंगा इत्यादि नदीगण एखाने मिलित हुई है। ए जन्म पंचबेनी एक बोला है, त्रिबेनी बोला है प्रयाग के, प्रयाग से के कोटिगुण श्रेष्ठ ये स्थान, प्रयाग से भी ये कोटिगुण श्रेष्ठ स्थान ये है। यहां पर राष्ट्रस्थली कुलिया पर्वत, मैंने कुलिया पर्वत का अर्थ है यह है गोवर्धन पर्वत। एक तरफ में हम लोग जहां आज गए थे उधर बहुला वन, उधरी में धीर समीर, इस तरफ में राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, और ये जो स्थली देखते हैं ये गोवर्धन की तराई में बासंती राज का स्थान चंद्र सरोवर है। यहां पर राज हुआ था। साधारण मत समझो इसको, ठीक से समझो। गुरुजी ने ऐसे तैसे जगह में नहीं किया इसको, इसलिए ये राजस्थली है बासंती का, जिसमें जयदेव जी ने वर्णन किया, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लम उदारम इत्यादि। ये ऐसा गुप्त स्थान है। ब्रह्मा जी ने यहां पर कोटि कोटि करोड़ों यज्ञ किया, उस तरफ में किया और इधर में किया, करोड़ों यज्ञ, एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ इस स्थान में किया। इसको कहते हैं अपराध भंजन पाठ, अपराध को दूर करने वाला ये पाठ अर्थात ये स्थान है। कैसे? जब हिरण्य गोवर्धन की राजसभा में हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा बतला रहे थे, उस समय गोपाल चापाल नाम का एक ब्राह्मण प्रतिवाद किया। पहले वही कह रहा था नाम के द्वारा मुक्ति नहीं होती, यदि हमारा कोई प्रतिवाद कर सके तो करो। हरिदास ठाकुर जी उसी समय में आए, उन्होंने कहा जो ज्ञान से मुक्ति होती है, हरिनाम से मुक्ति नहीं होती। हरिदास ठाकुर जी ने कहा मुक्ति के लिए नाम की जरूरत, नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। वो बिगड़ गया, उसने बोला यदि हरिदास ठाकुर जी सत्य यदि नहीं कह रहे हो तो इसका नाक कान गल जाए, कुष्ठ व्याधि हो जाए। सब सभा हाहाकार करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसका नाक काल सचमुच में गल गया, कुष्ठ व्याधि हो गई और नाक काल गिर गया। अब महाकुरूप हो गया, कोई पूछे नहीं, समाज में निम्न कोटि का व्यक्ति, घृणित व्यक्ति हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम से वृंदावन के लिए यात्रा किया तो उधर से पार करते हुए कंचन नगर, नई हाटी इत्यादि पार कर, नई हेटे इत्यादि पार करके इसी स्थान पर आए, यहां आकर के वाचस्पति के यहां विद्यानगर में जाकर के ठहरे, किंतु लोगों की कोटि लोगों की भीड़ हो जाने से उस स्थान को छोड़ करके यहां पर गुप्त रूप से इस कुलिया द्वीप में आए और माधव दास नाम के एक भक्त के घर में ठहरे। किसी को पता नहीं ये कहां है, गुप्त रूप से रहे। उसी समय में वो ब्राह्मण आया और महाप्रभु जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। महाप्रभु जी ने उस समय में उसको हरिदास ठाकुर से क्षमा मंगाया, कि मैं नहीं क्षमा कर सकता, पैर में कांटा गड़ने से सिर से नहीं निकलता, सिर से नहीं निकलता है, इसलिए पैर से ही निकालना पड़ा। हरिदास ठाकुर यदि क्षमा करेंगे तो हम क्षमा करेंगे। हरिदास ठाकुर तो वैसे ही क्षमा करने वाले, उन्होंने क्षमा कर दिया। देवानंद पंडित यहां पर जब यहां पर भागवत का क्लास लेते थे, भागवत पढ़ाते थे, उनके यहां बड़े बड़े छात्र लोग भागवत पढ़ते थे। एक दिन श्रीवास पंडित जी वहां पर पहुंचे और बरहापीड़म श्लोक सुनते ही वो भावीघोर होकर के गिर पड़े, मूर्छित हो गए। ए उधर क्या दिखता है, इधर दिखे देखो, इधर उधर देख रहा, भावीघोर होकर के गिर पड़े और उनको अष्टासात्विक भाव होने लगा। उनके छात्रों ने कहा ये हमारी पढ़ाई में गड़बड़ कर रहा है, बाधा दे रहा है, और उनके सामने सब लोगों ने मिलकर के हाथ पैर पकड़ करके घर से बाहर कर दिया। यहां पर भागवत हो रहा है। महाप्रभु जी को यह पता लगा, महाप्रभु जी बिगड़ गए। देवानंद भागवत कुछ नहीं जानता है, उसकी पोथी के लिए भागवत, वो भागवत नहीं है, उसको मैं लेकर के फाड़ दूंगा, इसलिए गुरु जी ने यहां पर हमारा वही रखा है, देवानंद का भागवत वो फाड़ रहे हैं। मैंने वो भागवत भागवत नहीं है, जैसे तैसे वक्ता भागवत के वक्ता नहीं होते हैं। इसके बाद में पुंडरीक विद्यानिधि से जब देवानंद पंडित का की भेंट हुई, उन्होंने महाप्रभु जी की महिमा, भागवत की महिमा बतलाई, तो वो महाप्रभु जी की महिमा, शिवास पंडित की महिमा जान करके बड़े उनको ज्ञानी हुई, पश्चाताप उनको हुआ और उन्होंने जाकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा। महाप्रभु जी मैं नहीं क्षमा कर सकता, शिवाश पंडित के यहाँ जाओ जब क्षमा करेंगे, तब उनके चरणों में गिर गया। तो उन्होंने क्षमा कर दिया, तो महाप्रभु जी ने उनको क्षमा कर दिया, तब से वो परम भक्त हो गए। उनका भी यहाँ पर यह है, गेट के सामने गुरु जी ने उनको रखा, ये कुलिया दीप का ये विशेष ये बात है। इसी प्रकार से बहुत लोगों को, यहाँ के जितने अध्यापक थे व्याकरण के और उनके छात्र थे, महाप्रभु के चरणों में अपराध किया था। सची पिशी माँ का यदि लड़का हमको मारता है तो हम भी उसे मारेंगे, महाप्रभु जी ने कहा। जी बड़े अफसोस की बात है, मैं आया था कृष्ण को कृष्ण में जगत करने के लिए और ये हमारे चरणों में ही ये अपराध कर रहे हैं, इसलिए इनका अपराध दूर कैसे होगा, मैं संन्यास लेकर के यहां से चला जाऊंगा तो पीछे से हमारी महिमा समझेंगे। तो ऐसा ही हुआ, महाप्रभु जी संन्यास लेकर के चले गए। जब आए तो उनकी महिमा समझा, जगत को उन्होंने कृष्णमय कर दिया, सर्वत्र कृष्ण नाम का प्रचार किया। बड़े बड़े प्रकाशानंद सरस्वती जैसे लोग, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे लोगों चरणों को झुका दिया, समस्त भारतवर्षीय और विश्व के जितने बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग उनके चरणों में झुक गए, अपने आप प्रचार हो गया। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने इस प्रकार से यहां पर उनको क्षमा कर दिया, और क्षमा करके इसलिए इसका नाम है अपराध भंजन पाठ। इसलिए वृंदावन के जितने बड़े बड़े वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इत्यादि हुए हैं, गौ किशोर दास बाबा जी महाराज, वृंदावन में वो लोग भजन करते थे, किंतु यहां पर आए, ये अपराध भंजन पाठ है, यहां पर अपराध का उतना विचार नहीं है। कृष्ण नाम में और कृष्ण के लीला इत्यादि श्रवण कीर्तन इत्यादि में कुछ अपराध का विचार है, किंतु गौर नित्यानंद ना ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम दे वह अष्टुधार। हा गौर हा गौर यदि करे कोई, हा नित्यानंद प्रभु हे नवदीप धाम यदि कोई हाथ उठा करके कहे, महाप्रभु उसके समस्त अपराधों को दूर करके प्रेम भक्ति संचार उसके हृदय में कर देंगे, ऐसा शुद्ध भक्त दे देंगे जिसे कि वो प्रेम भक्ति में वो प्रवेश कर सकता है। इसलिए अपराध भंजन पाठ है। यहीं पर प्रौढ़ा जोग माया है, हम यहां से निकले तो हम लोग प्रौढ़ा जोग माया के यहां गए। ये प्रौढ़ा माया कौन है? वृंदावन में जो जोग माया जी है वही यहां पर प्रौढ़ा माया के रूप में है। वृद्ध शिव और प्रौढ़ा माया नवदीप में मायापुर में, जहां हम लोग वहां पर जाते हैं, पासी में पड़ता है, नंदन आचार्य के भवन के और आगे में पड़ता है, वहीं पर पहले थे, किंतु पानी में बह जाने से वहां का स्थान जोग माया जी यहां पर आई और इनका नाम हो गया प्रौढ़ा माया। आजकल लोग उनको पोड़ा मा करते हैं। यह कृष्ण की छोटी बहन है, जो कृष्ण के बाद ही में वो प्रकट हुई थी, पहले कृष्ण हुए और जमज के रूप में उनकी भगनी ये जोग माया पौर्णमासी जी है। पौर्णमासी जी कृष्ण की आदि से अंत तक की समस्त लीलाओं को प्रकाश करने वाली हैं और योग्य जीवों को जोग माया अपना बल दे करके कृष्ण की सेवा में उनको लगाती हैं। वृंदा देवी कृष्ण के कुंज लीला, वृंदावन की जो कुंज इत्यादि लीला है उसमें वो लोगों जीवों को मिलाती हैं, अर्थात गोपियों को मिलन कराती है। दोनों एक नहीं है, इनमें कुछ थोड़ा सा वैशिष्ट दोनों में है, दोनों एक ही तत्व होने पर भी। तो यहां पर जोग माया है, जोग माया को हमने प्रणाम किया। इसके बाद में हम लोग जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संबंध में वहां पर हम जाकर के हम लोगों ने बोला और इसके बाद में हम लोग क्रमशः रुद्रदीप की तरफ में गए। रुद्रदीप के जाने के पहले रास्ते में बैकुंठपुर पड़ता है, बैकुंठपुर में रामानुजाचार्य रहे और वहीं पर उन्होंने नारायण और लक्ष्मी जी का दर्शन किया और लक्ष्मी जी ने उन्होंने अपने संप्रदाय में रामानुज को वर्ण किया, जो कली काल में तुम यही का आचार्य होकर के हमारी विचार को हम जैसे लक्ष्मी जी जैसे कृष्ण राम की सेवा करते हैं, नारायण की सेवा करती हैं वैसा कर। उन्होंने विशिष्ट द्वैत मत प्रकाश करके और जगत में उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। ये चारों वैष्णव संप्रदाय में से एक है। वहीं पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करके बोले जब मैं अब नहीं जाऊंगा, कहीं यहीं पर रहूंगा। महाप्रभु जी ने कहा भी हमको गुप्त रखो और जिस समय मैं आऊंगा तुम भी जन्म लेगा और जन्म लेकर के हमारे इस लीला तरंग को तुम भी अनुभव करेगा, इसलिए जब तक हमारी लीला का प्रकाश नहीं हो जाता है तब तक हमको गुप्त रखना होगा। पास ही में मातापुर है, मातापुर ये मध्वाचार्य वहां पर आए थे, मध्वाचार्य को उन्होंने दर्शन दिया था महाप्रभु के रूप में वहीं पर पांच पांडव लोग वहीं पर आए हुए थे और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु इत्यादि का दर्शन उन्होंने किया। इसी तरह से हम लोग रुद्रद्वीप में गए। रुद्रद्वीप में हमने वहां का कुछ महात्म्य वर्णन किया। संक्षेप में थोड़ा सा पुनः हम बतला देना चाहते हैं, वहां पर रुद्रद्वीप एकादश रुद्रों का स्थान है। उन्होंने गौचंद्र की आराधना वहां पर की थी। शंकर जी विष्णु वैष्णव है, वैष्णवानां यथा संभव भागवतम सर्वोत्तम वो है। यहां की हरिहर एक आत्मा है। यहां तक कि हम लोगों के अत्यंत उच्च कोटि के भजन जो अष्टकालीय है, अष्टकालीय भजन उसको वो देने वाले हैं। पार्वती जी को सुनाया, नारद जी को सुनाने वाले हैं, इसलिए परम वैष्णव है वो। गोपी भाव लेकर के गोपीश्वर महादेव वहां पर हुए हैं, इसलिए साधारण मत समझो। इसलिए वहां पर आकर के जो गौरचंद्र जी का दर्शन करने के लिए वहां पर हैं। और पार्वती जी सीमंत द्वीप में रह करके गौरचंद्र का दर्शन करती है और अपने सीमंत में मस्तक पर चैतन्य महाप्रभु जी की धूली को लेकर के सिंदूर के समान रखती है। जो हमारा सुहागा चल रहे, क्या सुहागा चल रहे, कृष्ण के प्रति, गौरचंद्र के प्रति हमारी प्रेमा भक्ति बनी रहे। इसलिए ये रुद्रद्वीप में शंकराचार्य भी आए थे। जोगमाया ने आदेश दिया आकाशवाणी के रूप में, तुम्हारा यहां पर अभक्ति मार्ग का प्रचार मत करना मायावाद का। इसलिए शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते इस प्रकार का यहीं से कीर्तन सीख करके तब उन्होंने प्रचार किया। और यहां पर मायावाद का प्रचार नहीं किया, कृष्ण की इच्छा से, भगवान की इच्छा से उन्होंने माया का बात का प्रचार किया, असुर मोहन करने के लिए और भक्तों को उन असुरों से बचाने के लिए किया। ये भी उनके एक अद्भुत भक्ति की बात है। वहां पर हम लोगों ने सुना रामानुज आए, मध्वाचार्य आए, विष्णु स्वामी आए, निम्बादित्य आए और गौरचंद्र की आराधना की। तो थोड़ा इसके संबंध में बतलाना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति थी, भक्ति तो सब समय रहती है, विशेष करके रामानुज विष्णु स्वामी मध्वाचार्य भक्ति का प्रचार किया। मायावाद का इन्होंने खंडन किया, पृथ्वी से इनको दूर करने की चेष्टा की। इन चारों वैष्णव संप्रदायों का मूल विचार एक है, जीव और ब्रह्म है एक नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है और जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता, न है न होगा न कभी था। जीव सेवक है और भगवान उपास्य है, सेव्य है। भगवान में शक्ति है, वो निराकार निरंजन नहीं है। ये साधारण जो विचार है ये चारों संप्रदाय में एक है। उपासना की पद्धति में कुछ कुछ वैशिष्ट्य है, भेद नहीं। उपासना में भी विचारों में भी कुछ कुछ भेद है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इन चारों संप्रदायों में जो कुछ कमी थी उसको पूरा करके अचिंत भेदाभेद मत का प्रकाश किया। जैसे रामानुज का विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत माने कि जरा संक्षेप में ही बतला रहा हूं, विशेष और विशेषण। भगवान का स्थूल शरीर ये ब्रह्मांड इत्यादि और उनका मन रूपी जो मानसिक सूक्ष्म शरीर ओ जीव जगत और स्वयं भगवान पर तत्व, इन तीनों को मिलाकर के विशेष अद्वैत। अद्वैत तो है किंतु जीव भी रहेगा, जगत भी रहेगा, अनंत कोटि जीव सेवक कभी रहेंगे और वैकुंठ में अनंत जीव उनकी सेवा करने वाले होंगे और यहां पर भी हैं। इसलिए सब मिलाकर के अद्वैत, क्योंकि अद्वैत में द्वैत प्रधान है, इसलिए विशिष्टाद्वैत मार्ग का प्रकाश किया। महाप्रभु जी ने इस इनके विचार से शक्ति का विचार कुछ लिया, उसको पूरा करके ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर का रूप उसमें लगाया। और मध्वाचार्य में द्वैत शुद्ध द्वैत है, जीव के साथ में भगवान का भेद, भगवान के साथ में जीव का भेद, जीव के साथ में जड़ का भेद, जड़ के साथ में एक दूसरे जड़ का भेद और जड़ के साथ में ब्रह्म का भेद, ये भेद है। भेद और अभेद रहने पर भी चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा इनमें से भेद तो लिया, क्योंकि भेद नहीं रहने से जहां पर भेद और अभेद होता है वहां पर भेद की प्रतीति होती है, अभेद की प्रतीति नहीं होती जब भेद कहां है। इसलिए भक्ति में भेद ही की जरूरत है। इसलिए मध्वाचार्य से शिव विग्रह कौन, दधि मंथन करने वाले गोपाल को लिया जो किसी भी संप्रदाय में नहीं है, और उनका यह विचार भेद का विचार जिसमें भक्ति रहेगी, सेवक और सेव्य का विचार रहेगा, उस चीज को ग्रहण किया, इस कमी को पूरा उन्होंने किया। और विष्णु स्वामी का शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत माने अद्वैत की अवस्था में भी सब एक अद्वैय ज्ञान पर तत्व है, उसमें अनंत कोटि जीव भगवान की सेवा करने वाले और अनंत चित जगत है और लाखों उनके करोड़ों अगणित सेवक हैं। ये शुद्ध अवस्था में भी हैं ये सब चीजें। कोई लोग कहते हैं शुद्ध अवस्था में निर्विकार निरंजन ये शक्ति इत्यादि है, और ये बद्ध अवस्था में भगवान ही ब्रह्म ही बद्ध हो गया और वो बद्ध होकर के नाना प्रकार के रूप में है, किंतु यह विचार भ्रांत है। शुद्ध अवस्था में भी गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में लक्ष्मी जी भी विश्वक्सेन इत्यादि गरुड़ इत्यादि उनकी सेवा करते हैं, इतर में गोपीगण इत्यादि सब सेवा करते हैं। इसलिए सब मिला करके ही अद्वैत ज्ञान को ही वहां पर अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अवस्था में भी ये सब जीव और जगत है और उनकी सभी सेवा करने वाले हैं। कहां से आए, ब्रह्म से ये सब उत्पन्न हुए। इसके बाद में वहां पर हमने सुना निम्बादित्य निम्बार्क, निम्बादित्य चतुसन से हुए, चतुसन भी वैसे साधारण नहीं है। इन्होंने भगवान की जिस रूप में उपासना की वो उपासना पद्धति निम्बादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुई, उन्होंने ये किया। उसका दार्शनिक का नाम रखा भेदाभेदवाद और उसको कहा गया स्वाभाविक भेदाभेद। भगवान से जीव का भेद भी है अभेद भी है, जड़ से जगत का भेद भी है अभेद, क्योंकि ब्रह्म से निकले हैं इसलिए भेद भी अभेद है। उनकी उपासना राधा और कृष्ण को रखते हैं, किंतु राधा कृष्ण की उपासना रखने पर भी उनकी उपासना रुक्मिणी और कृष्ण का है, द्वारका वाले का, ऐश्वर्यमय है, इसमें माधुर्य पर की अभाव रहित है वहां पर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उस विचार का संशोधन करके उसमें शोधन करके अब तक फिर उसमें भेदाभेद तो लिया, किंतु कौन भेदाभेद लिया, उसको पूरा करके अचिंत भेदाभेद लाए। वह भेद और अभेद उन लोगों में जो बाकी जो चार संप्रदाय हैं उनमें ब्रह्म का परिणाम माना गया, इनको जीव और जगत को वो ब्रह्म से निकले हैं। शंकराचार्य ने इसी डर से ब्रह्म भिकारी हो जाएंगे इसलिए उन्होंने कहा जिन्हें ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, किंतु वह सत असत असत और सत दोनों से अनिर्वचनित माने मिथ्या। वो क्या प्रचंड बौद्ध बात का उन्होंने प्रचार किया इस डर से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जी नहीं, शास्त्रों में बतलाया गया है दोनों भेद भी और अभेद भी, अभेद बतलाया गया कहीं कहीं और भेद भी बतलाया गया, ये दोनों बातें ठीक है। इसलिए किस रूप में सामंजस्य किया, अचिंत के रूप में, भगवान की शक्ति है और लोगों ने ब्रह्म से जगत और जीव को माना। महाप्रभु जी ने कहा जी ऐसा नहीं, इसको जीव गोस्वामी ने परवर्ती काल में इसकी व्याख्या सुंदर संदर्भ में की, ये जीव और जगत भगवान की शक्ति से आया। भगवान की तीन शक्ति है, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित शक्ति से अनंत कोटि वो चित जगत वहां का रहने वाले, यहां तक कि कृष्ण का शरीर, बलदेव का शरीर, नंद बाबा जसोदा गोपियों का, वहां पर जितने चीजें हैं ये सब चित शक्ति की परिणति है। और अनंत कोटि जीव चाहे वहां हो चाहे यहां हो ये चित शक्ति की आंशिक जो शक्ति तटस्था शक्ति के ये परिणति हैं। और अनंत कोटि विश्व ये जगत ये जड़ा शक्ति का ये परिणाम है। इसलिए महाप्रभु जी ने शक्ति परिणामवाद स्वीकार किया और उन सबके विचारों का खंडन किया सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य बृहस्पति जो काशी में रहते थे, विद्यापाचस्पति, उन्होंने जीव गोसाएं मधुसूदन वाचस्पति, उनको उन्होंने जो शिक्षा दी, महाप्रभु जी ने उनको दिया था, वही सब चीजें जीव गोस्वामी को उन्होंने बतलाया। जीव गोस्वामी ने इसी को संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार करके उन्होंने दिया है। विशेष रूप से जानने से, जानने के लिए उसको समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा से जीव गोस्वामी कह रहे हैं, वस्तु दो नहीं है, एक ही है। स्वतंत्र सत्ताशील वस्तु एक कृष्ण है। कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है और तत्व की चरम सीमा है, इनसे बढ़कर कहीं कोई तत्व नहीं है। ये साम्य क्या, अतिसाम्य, असमोध पर तत्व है, इनके कोई बराबर नहीं, इनसे बढ़कर के तत्व नहीं, एक ही पर तत्व है। उन्हीं की शक्ति से ये जगत और जीव सब कुछ प्रकाशित हुआ है। इसलिए कहते हैं शक्ति के न तस्य कार्यम न कर्णं च विद्यते न तस्मस्य अधिकस्य दिशते इत्यादि, पराश शक्ति विविधैव सूत्य इत्यादि बतलाया गया। इसलिए ब्रह्म की शक्ति है, वो कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर इसी के लिए बतला रहे हैं, अम्नाय प्राह तत्तम हरिमीह परमम सर्वशक्तिम रसाब्धिम तद्भिनांशास्य जीवान प्रकृति कौलितान विमुक्तांश भावात भेदा भेद प्रकाशम सकलम हरे साधनम शुद्ध भक्ति साधम तत्प्रीति में वे इत्युत्पसति जनान गौर चंद्र। यही दृष्टि तत्व दस मूल के रूप में जगत को नवा नवीन रूप में आविष्कार करके दिया। यदि भक्ति में प्रवेश करने की किसी की इच्छा हो तो इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना तो आलोस है, यहां तक कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, नहीं अनुशीलन करेंगे, भक्ति हो जाएगी। भक्ति ऐसी चीज नहीं है, इसलिए भक्ति में इस सिद्धांत को जानना आवश्यक है। सिद्धांत पुष्ट होने पर धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, आराध्यो भगवान ब्रजे सतन तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बधु बधु पर गेन जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो नः पर। अल्प में किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको विस्तृत रूप में विचार करके बतलाया। इन्होंने बतलाया एकमात्र आराध्य वस्तु कौन है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, द्वारकाधीश नहीं, चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को देने के लिए आए थे। उनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, हम लोगों को समझना होगा। जो वैकुंठाधिपति नारायण, द्वारकाधीश मथुरेश कृष्ण, राम और कृष्ण में क्या वैशिष्ट है, इस चीज को नहीं समझने से ब्रज का भाव नहीं आ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस चीज को देने आए। जितने प्रकार की आराधना है समस्त आराधना में बतलाया, आराध्य हो भगवान ब्रजे सतन धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना बजुबधु वर्गे न जाप कल्पिता, बजुबधु वर्गे न जा कल्पिता, ब्रजुबधु गण पार्थिय भाव से कृष्णचंद्र की जो सेवा की, चैतन्य महाप्रभु उसी चीज को बतलाने के लिए, व्याख्या करने के लिए कृष्ण स्वयं आए। यदि चैतन्य महाप्रभु जी नहीं आते तो ये प्रेम का कपाट कौन उघाड़ता, कौन जानता राधा कृष्ण तत्व को, कौन जानता उनके इस प्रेमामयी भक्ति को, कोई नहीं जान सकता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ये सब अद्भुत देन है। इन्होंने इन विचारों के माध्यम से जगत में अनर्पित चरिंग चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नतोज्वल रसांग भक्ति स्वयं हरिह पूर्व सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत में सचिनंदन इत्यादि का उन्होंने प्रचार किया। जो आज कोटि कोटि वर्ष तक ब्रह्मा जी के एक कल्प में ये सब विचार नहीं दिया गया, भक्ति नहीं दिया गया, तो मैं पहले बतला रहा था चैतन्य महाप्रभु के पहले रामानुज मध्य इत्यादि आए, किंतु उन्होंने भक्ति तो दी किंतु भक्ति को रसमय नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु आए, उनके परिकर रूप गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितंग जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण किया शिल रूप गोस्वामी ने संपूर्ण रूप से। इसलिए रूप गोस्वामी का विचार ही चैतन्य महाप्रभु का विचार, चैतन्य महाप्रभु का विचार ही रूप गोस्वामी का विचार है। जो रूप गोस्वामी के विचारों को नहीं पकड़ पाते हैं, जिस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए वो वैधि भक्ति इत्यादि का प्रचार करने के लिए नहीं आए, नाम के माध्यम से ये जगत में ये जो हरिनाम संकीर्तन इत्यादि का प्रचार किया और जो भक्ति का साधारण रूप में जो प्रचार किया वो साधारण लोगों के लिए समझो, किंतु चैतन्य महाप्रभु का मुख्य काम स्वयं राधा या प्रणव महिमा राधा जी के भाव इत्यादि का आस्वादन करना स्वयं, और दूसरों लोगों को उनके अधिकार के अनुरूप में जो प्रेम है उस प्रेम को देने के लिए जगत में आए थे, और किसी चीज के लिए नहीं आए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय में आकर इन चीजों को समझना चाहिए, ऐसे ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए, तभी जाकर के हम समझ सकते हैं। जैसे कि अभी बतला रहा था मैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य का विग्रह तत्व लिया, केवल वही तक लेकर के, केवल दधि मंथन वाले नहीं, रसराज महाभाव स्वरूप चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के उन मधुर भावों को ग्रहण किया। इसलिए आराध्य भगवान ब्रजेश की मैंने अवतारणा की। दूसरी बात, रामानुज का उन्होंने शक्ति का विचार लिया, विष्णु स्वामी का उन्होंने शुद्ध अद्वैत का भाव ग्रहण किया, और इस तरह से करके अचिंत भेदाभेद नामक एक सुंदर तत्व की का उद्घाटन उन्होंने किया है। जो परम सौभाग्यवान जीव हैं इसमें प्रवेश करेंगे और चैतन्य महाप्रभु के विचार में प्रविष्ट हो सकेंगे। इसलिए समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु किस लिए है, यदि उनकी लीलाओं को सुनकर चैतन्य महाप्रभु जी की चैतन्य चरितामृत में उनकी बातों को, उनके उपदेशों को सुनकर और चैतन्य महाप्रभु महाभाव विभो करके जगन्नाथपुरी के वो कंदरा में अपनी भजन की कंदरा क्या गंभीरा में, इसमें बड़े सौभाग्यमान जी वो लोग प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे संप्रदाय में हम लोग आए जिसको रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की इच्छा से इसको प्रेममय रसमय बनाया। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य हो सकता है यदि उसमें थोड़ा सा भी लोभ उत्पन्न हो गया, इस शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति में कैसे प्रवेश कर सके, तब तो हमारा इस संप्रदाय में आना, चैतन्य महाप्रभु के धाम में आना हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो ऐसा मैं समझता कि यदि चैतन्य महाप्रभु के इन भाव में कोई नहीं प्रवेश कर सका, उनके संप्रदाय में आने पर भी रूप गोस्वामी के ग्रंथों को देख करके भी, तो वैसा दुर्भागा जगत जन्म में कभी कोई नहीं ग्रहण किया होगा, ऐसा वो दुर्भागा होगा मैं समझता हूं। इसलिए इस संप्रदाय में आने का प्रधान लक्ष्य और उसका सफलता जीवन की यह है कि उनके जीवन को समझ करके, उनके विचारों को समझ करके हम लोगों को उन्हीं चीजों को पाने की लालसा यदि हृदय में जग जाए। इसलिए हमारे स्वरूप दामोदर जी ने यह कहा कि या राय रामानंद जी ने मति कि कृष्ण भक्ति रसमाविता मति तितोपि यदि लभ्यते तत्र लौलम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से साधु संग और साधु संग से भक्ति होती है, यह वैधि भक्ति के लिए लिखा गया, यह ठीक है, किंतु कृष्ण में रसमय भक्ति के को पाने के लिए जो लोभ उत्पन्न होता है, कृष्ण की सेवा की ब्रजभाव से जो लोभ उत्पन्न होता है वो कैसे होगा, ऐसे रसिक भाव तत्वज्ञ वैष्णवों का संग करने से, ये भी संग भी ये सुकृति द्वारा संभव नहीं, ये तो भगवत कृपा या भागवत कृपा से होगा। भागवत माने एक भागवत बड़ो भगवत भक्ति रस पात्र, आर भागवत एक भागवत है, एक तो भागवत शास्त्र और एक भागवत वैष्णव। भागवत माने शुद्ध वैष्णव, महावैष्णव महाभागवत वैष्णव, एदेर संगते है, एदेर कृपाते है, भक्ति आर साधन क्रम तो है ना। आर एक कथा बोले हमार वक्तव्य समाप्त करबो, क्यों क्यों मन करें जो हमारे अनर्थ अपराध दूर करे तापरे भक्ति करब। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि के हमारे पूर्व महाजन भागवत एरा सब तान एरकम धारणा प्रत्याग करा उचित। जो तो परिमाणे भक्ति हमारे हृदय ते आसबे तो परिमाणे अंधकार अनर्थ अपराध दूरीभूत हो, रात्र काले थे रात्र अंधकार আমার ইচ্ছাতে এতে দূর হবে না, একটা লাইট থাকা চাই, সূর্য নিজে থেকে আসলে নিজে থেকে দিন হয়ে যাবে, কোনো প্রয়াস করতে হবে না। ওই রকম হয় ভক্তির দেবী রূপী সূর্য, যত পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে আসবেন অন্ধকার অপরাধ অনর্থ দূর হয়ে যাবে, ভক্তি অপরাধ অনর্থের কোনো পরবাহ করে না। স্থানে স্থিতা তনুবাং মনোভি, যে যে স্থানেতে আছে ওইখানে তো হরি কথা শুনু, বৈষ্ণব চরণাশ্রয় করু, বৈষ্ণব কাছে হরি কথা শুনু, হরি নাম করুন, মহাপাপী আজামিল ওই অবস্থাতে অপরাধ দূর করে আর অনর্থ দূর করে তারপরে হরিনাম করবো তা নয়, ওই অবস্থাতে আরম্ভ করেছে। একটি নামা ভাষাতে উড়ে গেল কোথায় অপরাধ আর কোথায় কি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত চলে গেল। একজনে যে যেখানেতে আছে ওইখানে থেকে শ্রদ্ধাপূর্বক বৈষ্ণব পাদ আশ্রয় করল। থাকুক অনর্থ অপরাধ, ভক্তি যত পরিমাণেতে আভাস রূপেতে আসে তার দ্বারা অনর্থ দূর হয়ে যাবে, এমনকি এই বদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে। আর শুদ্ধ ভক্তির তো কথাই বাকি, এই জন্য ভক্তি প্রথমে আসুক। ভক্তি দেবী এত প্রভাবশালী যে যে রকম কেউ পাষণ্ড যদি থাকে, যদি ভগবত আর ভাগবতের কৃপা যদি হয়ে যায় কি সাধু সঙ্গ মধ্যে আসে, তাহলে ওই নিম্ন স্তরে থেকে তাকে মহা উন্নত স্থানেতে নিয়ে যে উপস্থিত করে দিবে, যেরকম বাল্মীকিকে করে দিয়েছে, অজামিলকে করে দিয়েছে। এমনকি ভাগবতেতে বলছেন কিরাত হুন্দ পুলিন্দ উৎকর্ষ যবন খসাদয়, এটা ভক্তি প্রভাবেতে। এমনকি বানর, এমনকি কুকুর, এমনকি রিচ্ছ ভালু, এমনকি রাক্ষস, এরা সব ভক্তি ভক্তগণের প্রভাবেতে একেবারে কিরকম ভগবানের ভজন করে দিয়ে চলে গেল। এই জন্য অনর্থ অথবা অপরাধ কর এই দূর করবার জন্য স্বতন্ত্র কেউ চেষ্টা করলে কোটি কোটি জন্মেতে দূর হবে না। যে অবস্থাতে আছে বৈষ্ণব সঙ্গ করুক, হরিনাম করুক, আর ভক্তি যত পরিমাণেতে হৃদয়তে যাবে অন্ধকার নিজে থেকে দূর হয়ে যাবে, পৃথক প্রয়াস করবার কোন প্রয়োজন না। এই জন্য ভাগবতেতে বললেন না তৎ প্রয়াস ও কর্তব্য নাই, জ্ঞানে প্রয়াস মুদপার্শ্ব নমন্ত এব জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম স্থানে স্থিতা তনুমাং মনোভি প্রয়াস ও অজিত জিত অপি ত্রৈহেতো লোকম। ভগবান অজিত, অজেয়, অপরাজিত, কিন্তু যদি কেউ ব্যক্তি নির্বিশেষ জ্ঞান তো অপরাধজনক, ওর মধ্যে যে জ্ঞানের দ্বারা যে মুক্তি হয় ওটা ভক্তি প্রভাবের দ্বারা হয়, জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোনো প্রভাব নাই। কিন্তু এই জ্ঞানের তো কথাই কি, তা অপরাধময় জ্ঞান ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব। আরে ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান কেউ ছেড়ে দিতে হবে, উন্নত অধিকার আসলে নিজে থেকে ছুটি যাবে। এরকম হয় যে কৃষ্ণ ভগবান ঐশ্বর্যশালী এইগুলিকে দূর করে দিয়ে, কেন চৈতন্য চৈতামৃত বলছেন ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত, ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান যদি থাকে তো তাহার প্রতি তিনি আমার বন্ধু, লৌকিক সদ্বন্ধু, এইটা ধরতে পারবা না কোনোদিন। ইনি আমার প্রিয়তম, ইনি আমার পুত্র যশোদা মতন, এই ভাব আসবে না যদি এটা জ্ঞান থাকে। কৃষ্ণ ঐশ্বর্যশালী বিশ্বরূপ ধারণ করবার যে কৃষ্ণ, এই জ্ঞান থাকলে ওটা জ্ঞান দূর হয়ে যাবে। এই জন্য উদ্ধবকে আজ পর্যন্ত ব্রজের রস আসে নাই। উদ্ধব গিয়েছিলেন গোপীদের কাছে, তিনি দেখলেন আশ্চর্যচকিত হয়ে গেলেন, তাদের চরণে ধুলি মাংলেন, যে দিশাতে গোপীদের থাকে ওদের দিশাকে প্রণাম করছেন, বন্দে নন্দ ব্রজে স্ত্রী নাম পাদ রেণু মভিক্ষ যাসং হরি কথোদ্গীত পুনাত ভুবনত্রয়ম, একটি ধুলিকানাকে প্রণাম করছেন। কোন ধুলিকে? সব থেকে চরণ চরণ ধুলি মধ্যে গোপী গায়গণ শ্রেষ্ঠ, ওই গোপীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীমতী, তাহার শ্রীচরণের একটি কণাকে তিনি প্রণাম করলেন, বন্দে নন্দ ব্রজ স্ত্রী নাম রেণু এক বচন। এই জন্য একটি ধুলিকানাকে, একটি ধুলিকানাতে কৃতার্থ হয়ে যাবেন। বন্দনা দূর থেকে করে দিয়ে ফিরে গেলেন মথুরা, গোপী হলেন না, বৃন্দাবনে তরুণ লতা গুল্ম ইত্যাদি হওয়ার বহু আকাঙ্ক্ষা করে বললেন যে আশাম হো চরণ রেণী দিশাম হম শ্যাম, আমি বৃন্দাবনে তরু লতা গুল্ম হই আর গোপীগণে চরণ ধুলি হতে লাগলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়ে যাব। তিনি গোপীদের মধ্যে কি তার লৌকিক সদ বন্ধুবত মিত্র সখা মা বাপ হতে পারলেন না, ব্রজ থেকে তাকে চলে যেতে হলো। যখন উদ্ধবের পক্ষে অত দুর্লভ এটা বুঝুন, নারদ মতন লোকের পক্ষে এইটা কঠিন সাধারণ জিনিস নয়, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু যারা আশ্রয় করেছেন মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে পাত্র দিয়ে দিবেন আর তার মধ্যে প্রেম ভর দিয়ে নিজে হাতে থেকে পেয়ালা দিয়ে তাকে চাষকা দিয়ে পিওয়াই দিয়ে দিবেন, উনকো পিলা দেন। এ চৈতন্য মহাপ্রভু কি অবদান হ্যাঁ, ইসলিয়ে কৃষ্ণ হি মহাপ্রভু হ্যাঁ, কিন্তু মহাপ্রভু কা ইহা পর বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণকে ভি অপেক্ষা হ্যাঁ। ক্যো? কৃষ্ণ অকেলে জব হ্যাঁ বিষয় জাতি প্রেম হ্যাঁ, আর রাধা জি কাজ ভাব চোরি করকে লে লিয়া তো রাধা জি ভি মিলিত হো গই, ইসলিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু কা ভাব ক্যা হ্যাঁ, রাধা জি কা ও কৃষ্ণ কা মিলিত, ইসলিয়ে উনকি কৃপা কা অধিক মূল্য হ্যাঁ। इसलिए पात्र दे करके भी और उसको प्रेम भर देते हैं और उसको एकदम कृष्ण प्रेम में उन्मत्त करा सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। चैतन्य कृष्ण जी तौल माप करके प्रेम देते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम। चैतन्य महाप्रभु का ये सब विचार, जे जे मागे तार दे प्रेम धन, कृष्ण प्रेम ऐसे जार दूरदर्शन से उनका कृष्ण प्रेम, एमन दयालु प्रभु नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु अनुग्रह करे शुद्ध भगवत भक्त गणेश संग दिए दें, संग दिए आता के कृपा करे। हमारा बहुत सौभाग्यवान हमारे गुरुवर्ग मध्य रूप सनातन आछेन, जीव गोस्वामी आछेन, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, तापर परवर्ती कलेते श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर और शिवास आचार्य और तापर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके अपनारा नरोत्तम ठाकुर की अन्य लोक थे कमा मन करबें ना, इन गौर शक्ति गदाधर स्वरूपिणी आ सप्तम गोस्वामी अत साधारण मन करबें ना, तार लेखन इत्यादि देखले इतना सहजे अनुमान करते पारे। अतः हमारे सम्पत्ति एर विचार हो सम्पत्ति कोनो संप्रदाय के एरकम है सम्पत्ति नाय, अतः महा सौभाग्यवान जी। अतः हमारा यही दिमाग चेष्टा करब, हमें अनेक खन बोलम, हमें यही बोले हमार वक्तव्य समाप्त करी। हमार गुरुवर्ग लोग हमारे ऊपर गुरु कृपा करूँ, हमारे गुरु पादपद्म कृपा करूँ, जे जन हमारे के कुथा है मगध इत्यादि थे के ट्रेने नहीं है, हम लोग को खींच करके यहाँ पर चोटी पकड़ करके लाया, हम विधि भक्ति और इस सब के लिए नहीं आए, ये तो हम पहले पहले जन्म में जानते थे। हम तो आए चैतन्य महाप्रभु के करुणा के लिए, उसी के लिए हम प्यासे और भूखे हैं। चैतन्य महाप्रभु वैसे ही हमारे ऊपर में कृपा करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा।